भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों से एक भाई और उनकी पत्नी फाका कर रहे हैं और यहीं बस इस मंदिर के बाहर रास्ते पर हम बैठे हैं। मैं तो उनको मिल नहीं सका हूँ, लेकिन उन्होंने दोबारा एक खत लिखा है। वो खत तो विनय से भरा हुआ है, तो भी दुखद खट है, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो ज्ञान की निशानी नहीं है। छोटे हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया, इसका अनुभव है, इसलिए मैं ऐसा कहने की भी धृष्टता तो कर सकता हूँ कि इसमें कुछ ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि बात तो तुम कहते हैं, मीठी बात तो लगती है, लेकिन हम तो अंतरात्मा जो हमको कहता है उसके मुताबिक चलती है। अभी आप लोग सबने तो नहीं पढ़ा होगा कि तिलक महाराज ने जो भगवद गीता पर एक बड़ा भारी पुस्तक लिखा है, वो पुस्तक में तो यरोड़ा जेल में भर सका और वहीं वो तो पुस्तक तो ऐसा है कि आदमी एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा पढ़े तो भी उसमें इतना ज्ञान भरा है। ये मतलब मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि उसमें जिस तरह से सब निरूपण किया है वो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन उससे क्या हुआ है, उसमें बहुत ही ज्ञान भरा है, इसमें तो कोई संदेह कर ही नहीं सकता है। और क्योंकि वो तो बड़े विद्वान थे, संस्कृत का तो उन्होंने बहुत ही गहरा अभ्यास कर लिया था, अंग्रेजी साहित्य भी इस बारे में, धर्म के बारे में जितना पढ़ सकते थे वो सब पढ़ लिया था। उन्होंने उनका जो एक बड़ा विवरण किया है उसमें लिखा है, वो मुझको बस ये लग गया कि ठीक कहते हैं। अंग्रेजी में अंतरात्मा का नाम तो कॉन्शियंस दिया है, तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में सब तो अच्छा है और सब ऐसा ही उनको सिखा देते हैं कि सबको कॉन्शियंस पड़ी है, तो जैसे कॉन्शियंस कहें इस तरह से करना चाहिए। तो वो भेद करते हैं कि बात तो है कि सबको कॉन्शियंस तो है, लेकिन कई लोग हैं उनकी कॉन्शियंस तो छोटी है। मैं उनके शब्द तो मुझको याद नहीं है, भावार्थ ही याद है, इतने वर्षों के पहले पढ़ लिया वो शब्द, में आपको कहाँ से देने वाला था, लेकिन जो उसका भावार्थ है वो आज भी कान में गुंजन करता है। तो उन्होंने कहा कि वो सबको है तो सही, ऐसा कह तो सकते हैं कॉन्शियंस, लेकिन वो उनकी कॉन्शियंस छोटी है, इसलिए हमारे में मानी वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में कहो, उनमें तो ये सिखाया है कि वो तो पीछे तो वो हमारे जो संस्कृतज्ञ है या तो शास्त्र जानने वाले, वो तो कहता है कि सबको कॉन्शियस है ही नहीं, लेकिन वो तो ठीक नहीं है। कॉन्शियंस तो है, लेकिन उसको कॉन्शियंस छोटी है, छोटी है तो वो कैसे कह सकता है कि मेरी कॉन्शियंस मुझको कहती है, क्योंकि छोटी हुई कॉन्शियंस किसको कहती, नहीं सुना सकती है। ऐसा कहो कि वो मूड है, वो छोटी हुई है, मूड है, जो कुछ भी कहना है वो कहो, लेकिन उसको नहीं है। तो कॉन्शियंस जिसको है, जो जागृत उसको करना चाहता है, उसको यम नियम आदि का पालन करना पड़ता है और बड़ी चेष्टा करता है, तब उसको अंतरात्मा है ऐसा कह सकता है, अंतरात्मा तब उसको जागृत हुआ है ऐसा कह सकता है। तो जिसकी अंतरात्मा जागृत हुई है वो ही कह सकता है कि मुझको मेरी अंतरात्मा कहती है कैसे करूँ। अभी इससे उल्टी बात ले लूँ, उल्टी बात का भी कुछ मेरा ख्याल है कि दृष्टांत दिया है उन्होंने, लेकिन मुझको परवाह नहीं है। उसमें तिलक महाराज के ग्रंथ में वो दृष्टांत भी दिए हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि एक आदमी शास्त्र सब पढ़ ली टोटा के मन, तो उसमें क्या लिखा है वो भूल गया, तो उसको कहना पड़ेगा तो अभी मैं भूल गया, मैं तो ऐसा नहीं, मैंने तो एक चीज़ अगर ले ली, ग्रहण कर ली, हजम कर ली, तो पीछे वो मेरी हो गई। पीछे ऐसा नहीं कहते कहकर मैं कह सकता हूँ कि मैं इसका अनुवाद करता हूँ, लेकिन वो मेरी हो गई। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी वो मोदी चीज़ नहीं है, दूसरों ने बताई है, लेकिन मैंने उसको हजम कर ली, हजम कर ली, इसलिए वो मेरी हो गई। कोई भटियारा ने रोटी पकाई तो सबकी सब रोटी तो मेरी नहीं हुई, लेकिन जितनी रोटी मैं लाया वो भी मेरी नहीं हुई। जितनी रोटी उसमें से मैं खा सका और जो मुझको हजम होगी, खाई खाई, लेकिन मैंने तो बहुत खाई ली, खा लिए तो इसलिए वो हजम नहीं हुई, तो भी वो रोटी मैंने खाई नहीं, मेरी नहीं हुई। लेकिन मेरी हुई ऐसा तो वही कह सकता हूँ कि जिसको मैंने हजम कर ली है, जिससे वो रक्त शुद्धि हो गई, रक्त वृद्धि हो गई, मेरी शक्ति बढ़ गई, तब तो वो रोटी मैंने खाई, ऐसे मैं कह सकता हूँ। इसी तरह से वो चीज़ तो मैंने पढ़ तो मान ली, लेकिन वो मुझको बराबर मैंने हजम कर ली। इसलिए जो मैं दृष्टांत देता हूँ उसमें है या नहीं उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत लोग जानते होंगे वो ग्रंथ पढ़ा है, तो आप कहें कि वो तो गांधी क्या कहता है, ये सब चीज़ें हम तो नहीं देखते हैं। तो आपको डरना नहीं, आपको मेरा विश्वास भी नहीं करना कि उसमें नहीं देखते हैं, क्योंकि मैंने हजम की है उसको। जिस तरह से मैं श्रृंगारित करना चाहता हूँ इस तरह से कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि एक चोर है, ठग है, वो भी कहे कि मेरा अंतरात्मा ने कहा कि ये बच्चा है उसका खून कर, और पीछे उसने जो जेवर पहने हैं वो जेवर तो छीन ले, क्योंकि बच्चा शायद वो आवाज़ करेगा तो कोई जाग जाए, कोई समझ लेंगे तो पीछे तो उसको पकड़ लेंगे। इसलिए मेरी अंतरात्मा ने कहा कि उसका तो खून कर और वो जो जेवर है वो उठा ले। ये इतनी चीज़ तो बनी हुई है, और बनी ही थी भी दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका दक्षिण हिंदुस्तान में। जब मैं आ गया उस वक्त किसी ने कहा कि मेरा लड़का के लड़की थी और उसने बहुत जेवर पहने थे, तो उसको भी काट डाला, वो जेवर तो छीन लिया, तो तब से मुझको रह गई है। वो भी ऐसा कहें, उसने कहा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो कहें वो डाकू कि मेरी अंतरात्मा ने ऐसा कहा, तो पीछे हिंदुस्तान का हाल क्या होगा अगर इस तरह से कहें। एक जड़ जैसा आदमी है, अभी जड़ जैसे हम भी हैं ना, यहाँ बन गए, वो सब कहें कि मेरे अंतरात्मा ने कहा कि चलो मासूम बच्चे हैं मुसलमान के, उसका भी खून करो, या तो कोई मुसलमान दीवाना बन गया, वो कहें कि मासूम है उसको क्या है, आखिर में वो तो है तो हिंदू ना, उसका छोटा लड़का है, वो छोटा लड़का है तो भी वो तो जहर रूप है, इसलिए उसको काटो। तो मैं ये कहूँ और वो मुझको कहे तो मैं उसका समर्थन करूँ कि उसका अंतरात्मा ने कहा कि इसलिए मार दिया, तो वो धर्म नहीं देता है लेकिन अधर्म हो जाता है। मैं आपको तो सुनाता हूँ, तो उसके मार्फत वो बहन भाई यहाँ पड़े होंगे, बहुत विनय से लिखते हैं, तो उनको भी मैं सुना दूँ। और पीछे ऐसे बहुत हमारे यहाँ पड़े हैं फाका करने की धमकी लेते हैं, तो वो कर लें। इसलिए एक तो मैं ये कहूँगा कि वो दावा नहीं कर सकते हैं तो उनका भी अंतरात्मा उनको कहता है, वो तो अंतरात्मा जिसका जागृत हो गया है वही कह सकते हैं। और दूसरा वो क्या लिखते हैं कि हम तो ये करते हैं, तुमने कहा है, हाँ वो कहता है कि तुमने कहा है कि इस बारे में तो तुम आचार्य है उस शास्त्र का फाका करने का, ठीक है कि मैं हूँ, वो मैंने दावा तो किया है, करता हूँ आज भी। और ऐसा ही कहो कि जब कोई ऐसा दावा नहीं करने वाला है तो पीछे मैं कर लेता हूँ, तो जिस जगह वृक्ष नहीं है वह एरंडो प्रधान, ऐसा तो मैं बन सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों कहता हूँ कि वो जैन मुनि लोग हैं, साध्वी लोग हैं और वैष्णव भी हैं, दूसरे फाका करने वाले पड़े हैं, वो सब मुझको पूछ लेते हैं, मुझको पूछे नहीं तो उनके सेवक मुझको कहते हैं कि इनको समझाओ। तो एक तो बड़ा मुनि रहा और वो बहुत फाका करता था, और फाका क्यों करता था कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, नहीं होती है तो उसके लिए मैं फाका करूं। अभी वो कहते हैं कि हम कैसे करें, हम वो मानने वाले नहीं हैं, मानते नहीं हैं, तो वो फाका करते हैं इसलिए माने, तो किसी न किसी तरह से तुम उनको सुना सकते हैं। तो मैंने उनको तार दिया, ऐसा मुझको ख्याल है, या तो खत लिखा होगा, मुझको याद नहीं है। तो लिखा तो उन्होंने वो फाका छोड़ दिया, और बहुत दिनों तक फाका किया था। ऐसी एक बहन भी पड़ी थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुझको दूसरा तो कोई नहीं कह सकते हैं और मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन गांधी का है तो मैं छोड़ सकती हूँ। गांधी ने कभी उस बहन को देखा भी नहीं था, लेकिन उनको इतना विश्वास आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद वाका करने का जो शास्त्र है उसका मैं आचार्य हूँ। मुझको पूछे आदमी पूछे, और पीछे मैं कहूँ कि वो करने लायक नहीं तो उसको छोड़ना चाहिए। इसलिए ऐसा मेरे पास तो बहुत दृष्टांत पड़ा है, अभी दूसरा तो मैं छोड़ दूँ। ये धर्मानंद कौशाम्बी जिसकी मैंने आपको बात की, वो तो बड़े विद्वान थे, उन्होंने फाका शुरू कर लिया था, और पीछे मेरे वो तो उनका एक शिष्य था, उसने मुझको कहा कि भाई हमारी तो मानता नहीं है, बहुत लोगों ने भी कहा उसकी भी नहीं मानता है, लेकिन शायद तुम्हारी बात माने। तो मैंने एक स्टार दिया, नहीं माना, दूसरा दिया, नहीं माना, तीसरा दिया, तो उनको लग गया कि नहीं अभी गांधी कहता है वो मानना चाहिए। जो उसमें पेश उठते थे उसका मैंने जवाब उसको दे दिया कि ऐसा है ऐसा है, तो पीछे उन्होंने छोड़ दिया छोड़ दिया। और पीछे तो काका साहब यहाँ पड़े हैं, वो सुनाते हैं मुझको, तो उसके खत में भी था कि मैंने जो फाका छोड़ दिया, गांधी ने कहा वो सही बात थी, आखिर तो वो मर गए, वो तो मैंने आपको सुना दिया है इस तरह से। और इसलिए मैं वो दोनों दंपति को कहना चाहता हूँ कि वो फाका न करें, फाका छोड़ दें, 3 दिन कर लिया अच्छा है, उसमें क्या है, लेकिन अभी उनको चलाना नहीं चाहिए। एक तो वो बात, वो तो मैंने लंबी छोड़ी बात कर ली। अभी दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूँ, तो आपने तो देखा अखबारों में कुछ आ गया है कि मैं तो वाइसराय साहब के वहाँ चला गया था, एक बात तो मैंने आपको सुना दी, लेकिन ऐसा भी अखबारों में है, बात सच्ची है कि वहाँ तो मैं कायदे आजम जनरल साहब को भी मिला, तो मैंने वो बात तो नहीं की, क्योंकि उसमें तो ऐसा था कि उनको तो मिला तो सही, और मिला वो भी तो वो वाइसराय साहब है, वो अच्छे आदमी है, उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ जिना साहब भी आने वाले हैं और ये तो बात करता है तो उसको अच्छी लगती है, तो उनके सामने हम कर ले तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मुझको क्या है, कोई भी आवे उसको मैं मिलूँ, मिलने में तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उनके घर पर चला जाऊँ, उसमें क्या है। तो वो तो राजी हुए, जिना साहब तो आने वाले थे तो आ गए, उन्होंने खबर दे दी घंटी यहाँ बैठा है, हम मिले तो मिले, बातें की। तो पीछे आखिर में ये साथ हुआ था कि बादशाह खान भी साथ में रहे तो अच्छा है। तो शाम को कल जाना का था, यहाँ से 7:45 बजे वहाँ पहुँचना था, तो 7:30 बजे थोड़ा प्रार्थना में मैंने जल्दी भी किया 7:30 बजे जाने के लिए, लेकिन बादशाह खान नहीं है, वो बादशाह खान देवबंद गए थे और वहाँ से आ नहीं सके, वो तो फकीर है ना, जैसी तैसी मोटर गाड़ी में चले गए, और पीछे जाने में 3 घंटे के बदले में 5 घंटा लग गया, आने में भी देर हो गई, तो पहुंच नहीं सके यहाँ, तो 8 बजे आए, तो 8 बजे तो जा नहीं सक रहा था, तो इसलिए वो जाने का छूट गया। मैं आपको क्या खबर देने वाला था, लेकिन तो विशेष वाइसराय साहब तो चले गए, उनके दिल में था कि न किसी तरह से हम मिले तो अच्छा है बादशाह खान के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन लॉर्ड इजमे तो हैं, उनको मैं पहचानता हूँ, बड़ा आदमी है वो भी, और पीछे उनका वो दूसरे उनके सेक्रेटरी उनके स्टाफ पर है सर एरिक मेविल, ऐसा ख्याल में भूल गया, तो वो दोनों वहाँ थे और हम मिले, कौन मिले, कायदे आजम जीना मैं और बादशाह खान। तो आज 4:30 बजे वहाँ चले गए, 4:30 बजे वहाँ चले गए, कुछ 8 घंटा बैठे, और उसका नतीजा इतना आया कि बादशाह खान को वो मिले और उनके घर पर मिले। तो बादशाह खान अभी तो वहाँ चले गए होंगे, वो तो यहाँ ही मेरे साथ रहते हैं, चले गए होंगे, यहाँ तक वो नौबत आ गई। अभी आप तो उसमें से कोई लंबा चौड़ा मानी न निकाले कि अच्छा तब तो अच्छा है। एक तो है कि जैसी मैं आशा करता हूँ ऐसा आप भी आशा करें कि वो पाकिस्तान हो गया, इससे हमारा दिल का जो जख्म है वो तो रूझ नहीं गया है, शायद वो जख्म तो गहरा चला गया, वो नहीं चला जाए, और किस तरह से रूझ सकता है वो तो मैंने आपको बता दिया है, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये है तो भी आप भी राजी होते होंगे कि अच्छा वो बादशाह खान गए हैं कायदे आजम जिना के वहाँ, तो अभी कुछ न कुछ उसमें से तो अच्छा परिणाम आवे, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही परिणाम आए। इसी उम्र से तो ये सब चीज़ें होती है, तो आपको तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कोई लंबी छोड़ी आशा हम बांध कर बेचे नहीं। जब चीज़ हो गई है तो अच्छा है, नहीं होती है तो भी कोई परवाह नहीं। हम तो आखिर में मनुष्य है, प्रयत्न करें, फल देना वो तो भगवान के हाथ में है। तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि जो कुछ चेष्टा भी हो रही है, बादशाह खान वहाँ जाते हैं, तो हम भी प्रार्थना करें कि उसमें से कोई भी अच्छा परिणाम आ जाएगा। अच्छा परिणाम क्या आ सकता है कि एक तो ऐसा है ना कि सरहद में तो सब पठान देते हैं। अभी पठान तो छोटी कौम है, कोई करोड़ों की आबादी में तो है ही नहीं, लेकिन पठान को हम जानते हैं क्यों कि पठान तो तलवारबाज लेते हैं। वो सरकार की भर्ती जो चलती थी तो वो काफ़ी तादाद में वो पठान में कोई ऐसा नहीं है कि जो तलवार नहीं चलाना जानता है या तो बंदूक नहीं चलाना जानता है, सब ऐसे हैं। और पीछे वहाँ तो वो दूसरी तीसरी ट्राइब्स भी तो पड़ी है, वो भी ऐसे है, लेकिन वो सब पठान हैं या तो पठान जैसे हैं। तो बादशाह खान का तो यही ख्वाब है ना कि पठान सब एक सा हो जाए, एक सा हो जाए। पीछे क्या करें कि आपस में खूना मर्की करके मर जाते हैं। वो कोई सरकार की भर्ती में जाते हैं वो तो भले, लेकिन वहाँ तो ऐसा चलता है कि एक खून हुआ तो उसका बदला लेना चाहिए, पीछे तीसरा बदला, तो वो दर पीढ़ी चलता ही रहता है। उसमें से बादशाह खान ने देखा कि नहीं, वो तलवार की बहादुरी तो है लेकिन उससे भी बुलंद बहादुरी पड़ी है। वो क्या पड़ी है कि हम तो बगैर तलवार के दुनिया मारे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि वो सब ईमानदार मुसलमान रहता है, उसको तो कहना ही पड़ता है कि सबको मार डालूँ, उससे क्या खुदा को मैं पहचान लूँगा कि सबकी रक्षा करने में, और रक्षा भी कैसे कि मार कर रक्षा करना, और मर कर कि अपने आप मर जाए और पीछे रक्षा करें। वो ख्वाब खान साहब का के ख्वाब है, वो ख्वाब तो पूरा तो नहीं हुआ है, बीच में ये झगड़ा शुरू हो गया। वहाँ झगड़ा ऐसा शुरू हो गया कि खान एक गिरोह ये है कि वो लीग में रहता है, दूसरा गिरोह वो कांग्रेस में रहता है, तो कांग्रेस भी बदनाम हो जाए कि कांग्रेस तो हिंदू है, हिंदू की तो है ही नहीं कांग्रेस, कांग्रेस तो सबकी है, लेकिन आज तो बदनामी में ही हम पड़े हैं, हम भी शक लाते हैं मुसलमान पर, मुसलमान हमारे पर शक लाते हैं, तो सब शक से ही चलता है। तो खान साहब को ऐसा लगा कि अगर किसी न किसी तरह से पठान सब का सब एक दिल बन जाए, एक ही काम करें, तब तो पठान तो जिंदा रहेगा, नहीं तो पीछे जो सरहदी सूबा है वो बिल्कुल निकम्मा हो जाए। अगर आपस में लड़े तो यादवास्थली हो गई। यादव लोग दूसरों के मारने से नहीं मरे, लेकिन आपस में झगड़ा करके मर गए। ऐसे ही आपस में झगड़ा करके पठान मर जाए वो नहीं चाहते हैं, इसलिए कहीं भी वो चले जाएगा। वो ऐसा फकीर नहीं मानता हूँ उनको कि किसी न किसी तरह से पठान आबाद रहें, और आबाद रहकर पीछे क्या करें कि जैसे वो पहले तो वैसा हम मानते थे, आज भी हमको सताते हैं, ऐसे पठान काफ़ी पड़े हैं कि उनको तो ऐसा कि पठान पीछे खुदाई खिदमतगार सच्चे बने, अपना खिदमतगार नहीं, अपना ही भला करना ऐसा नहीं, लेकिन सारे हिंदुस्तान का, सारी मखलूब का, सारी दुनिया का, वो उनका ख्वाब है। इसलिए वो ऐसा चाहते हैं कि किसी न किसी से, अभी तो रेफरेंडम की बला आ रही है, तो उसमें से किसी न किसी तरह से छूट जाऊं और पठान एक हो। पठान कैसे एक हो सकते हैं कि पठान वो सब आज़ाद रहें, और आज़ाद रहें, अपना कानून बना है तो बना लें, और पीछे वो पसंद करेंगे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे कि हिंदुस्तान में रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसी आज़ादी नहीं चाहते हैं कि बस वो तीसरा गिरोह बन जाए, दो तो गिरोह बन गए हिंदुस्तान पाकिस्तान जो उसका नाम कहो, और तीसरा गिरोह पीछे अफगानिस्तान, ऐसा नहीं है। वो तो कहते हैं कि अपने घर में हम पूरा पूरी हमको आज़ादी होनी चाहिए, अपने कानून हम बना लें। तो हम तो मिस्किन है, इतने पैसे भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जैसा हमको चाहिए इस तरह से हम कानून बना लें तो पीछे हम आबादी से रह सकते हैं, पठान सब एक बनकर रह सकते हैं। वो उनका ख्वाब है, वो ख्वाब किसी न किसी तरह से पूरा हो सकता है, और आपस में जो झगड़ा होता है वो झगड़ा मिट जाए, तो पीछे पठान वो सरहरी सूबे में हिंदू भी रह सके ना, आज तो हिंदू तो भाग आए हैं, हरिद्वार में पड़े हैं, कहीं पड़े होंगे, लेकिन बहुत भाग आए हैं, सबके सब तो नहीं भागे हैं, इतनी बड़ी तादाद में पड़े हैं हिंदू, सब कहाँ से आ गए, और गरीब बेचारे जाएं कहाँ, लेकिन काफ़ी आ गए हैं। तो वो भी खान साहब को चुपता है कि क्यों एक भी हिंदू को सरहद सूबे से जाना पड़े, ये खान साहब का ख्वाब है। तो खान साहब वहाँ चले गए हैं आज, और वहाँ क्या करेंगे वो तो मुझको पता नहीं है, लेकिन ये कहना चाहते हैं वो कि इस तरह से अगर हो सकता है तो पीछे हम आज़ादी से, उसमें क्या जरूर है हमको रेफरेंडम में या तो किसी को तकलीफ लेने की, हम आपस में कर लेंगे और फैसला करेंगे सब पठान मिलके। पीछे ऐसा नहीं कि कांग्रेसी पठान जुड़ा है या तो लीगी पठान जुड़े हैं, सब पठान ही एक हैं, और एक होकर कह देंगे कि हम तो ये बड़े हिंदुस्तान में रहते हैं, तो छोड़े छोटे हिंदुस्तान है जिसका नाम पाकिस्तान को जो कुछ भी कहता वो बात है। ये झगड़ा किसी न किसी तरह से जा सकता है तो वो सब सारा हिंदुस्तान की खिदमत कर सके, उस कारण वो वहाँ चले गए हैं। क्या करके आएंगे वो तो मुझको कोई पता नहीं है, हम तो आप इबादत करें, ईश्वर की प्रार्थना करें कि इस तरह से हो। वो तो ये बात हो गई। अभी तीसरी बात कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आज मेरे पास वो ख्वाजा साहब की तो मैंने बात सुनाई थी, कल भी आए, लेकिन वो तो बड़ा आदमी है और बहुत बहादुर आदमी है, तो आज आए, उनके साथ रूसे भी थे। उन्होंने कहा कि देखो अभी तो वो तो अभी जो पाकिस्तान हो गया तो मुसलमानों में तो दो फिरके ऐसे बन जाते हैं, तो अभी यहाँ क्या करेंगे हम। एक तो ये समझो कि हम तो वो नेशनलिस्ट मुसलमान बड़े हैं, तो उनका क्या होगा उसकी तो मुझको कोई फिक्र नहीं पड़ी है, लेकिन अभी तो जो एक सेपरेट इलेक्टर की बलाठी वो तो दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और हम अभी ये यूनियन में बड़े हिस्से में हम सब एक होकर रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे, एक होकर रह सकेंगे उसकी क्या मानी, कि हम एक वो कानून के सामने सारी दुनिया के सामने तो हम एक प्रजा है, उसमें सबके धर्म तो अलग अलग रहता है, वो धर्म है वो तो एक व्यक्तिगत बात हो गई, मेरा धर्म वो इस्लाम है, तेरा हिंदू है, लेकिन तू तो कहता है कि क्योंकि तेरा अच्छा धर्म है और तू अच्छा धर्म को मानता है इसलिए तू मुसलमान भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है, ऐसा कहता है, तो मैं भी वही दावा करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा मुसलमान हूँ इसलिए मैं तो अच्छा हिंदू भी हूँ, अच्छा पारसी भी हूँ, तो वो तो मेरे घर का, तू तेरे घर का, लेकिन हिंदुस्तानी की हैसियत से कानून के सामने तो तू और मैं और दूसरे सब एक हैं कि नहीं। मैंने कहा कि वो तो एक ही हो सकते हैं, इसी कारण तो मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और इसी कारण आप भी जिंदा रहते हैं, तो वो कौन सी बड़ी बात है। अब एक तो पाकिस्तान बन गया, क्योंकि वो कहते थे कि सेपरेट इलेक्टरेट वो भी काफ़ी नहीं है मुसलमानों के लिए, एक आदमी के दिल में एक शक पैदा हो जाता है, सब ऐसा कहता है, अच्छा उसको ज़्यादा सीट दे दो वो भी काफ़ी नहीं है। पीछे आप हम तो पहले सुनते थे ना कि जना साहब के 14 पॉइंट्स है, 14 भी तो एक जगह हुए तब तो मैं हाजिर था, उसके पहले तो कुछ 11 के 12 के ऐसे कुछ थे, पहले तो उससे भी कम रहे, वो जना साहब नहीं बनाए थे, लेकिन जना साहब ने बनाए थे, पीछे 14 बने, पीछे 21 बने, पीछे 21 नहीं, पीछे एक बना, एक क्या कि बस पाकिस्तान होना चाहिए, वो क्या उसका इतिहास तो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ। ऐसा बना तो अभी तो वो नहीं है ना, वो सब चीज़ के बदले ख्वाजा साहब कहते हैं, तो सब चीज़ के बदले अभी तो वो तो पाकिस्तान बन गया, भले बन गया, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, तो यहाँ मुसलमान को कोई गुंजाइश है कि नहीं। तो मैंने कहा कि आपको क्या बोलना था, मेरे लिए गुंजाइश है तो आपके लिए है, अगर आपके लिए नहीं है तो मेरे लिए नहीं है, ऐसे हम दो तो बने हैं तो कम से कम दो तो रहते हैं। तो उसने कहा कि तू तो मजाक करता है, हम दो हैं उससे क्या हुआ, सबका क्या तू कहना चाहता है कि अभी भी हम तो तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, तीसरा पारसी है, चौथा ख्रिस्ती है, और सबके लिए अलग अलग प्रबंध होना चाहिए, जैसे कोई हिंदुस्तान बन सकता है, हिंदुस्तान सारी दुनिया में एक बड़ा मुल्क है, ऐसा कोई कबूल करने वाले हैं, ऐसा करें तो इसलिए वो कहता है कि क्या अब तेरा और मेरा काम और सब का यही होने वाला है कि नहीं है इस हिंदुस्तान में, कि हम तो एक प्रजा है, हमारा हमारा धर्म कुछ भी हो और हमको क्योंकि हम मुसलमान हैं या तो यूं है या तो वो है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा हक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, सबको एक सा हक, जो जो उस चीज़ में आ सकता है वो सबको हक है, हमारे जो सर्टिफिकेट ले लेना है मेरिट का वो बात है। तो मैंने उनको कहा, कह दिया कि वो तो बात बिल्कुल सही है, वो भी आपको सुनाना अच्छा था कि ऐसे भी मुसलमान यहाँ पड़े हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हम सच्चे बनते हैं, और ऐसा ही कि ऐसा नहीं कि अच्छा अभी तो ये हिंदुओं का ही हुआ है और तो आपको मैंने सुना दिया, आप लोगों को सब का है जो इस हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान की वफादारी करने चाहते हैं, वो सब का वो हिंदुस्तान है। ये उनके साथ बात हुई और आप वो भी जान लें।